Iran Radio Podcast.
दोस्तों, जितना पुराना इतिहास इंसान का है उतना ही पुराना युद्ध और शांति का भी है। जब से इंसान है युद्ध और शांति तभी से है। दुनिया में अलग अलग वजहों से जंगें लड़ी जाती रही हैं। धर्म के नाम पर लड़ी जाने वाली जंगों का एक सिलसिला था जिसे हम क्रूसेड्स के नाम से जानते हैं। क्रूसेड पॉडकास्ट का ये 20वां एपिसोड है। ईरान रेडियो से मैं हूँ सैयद मीसम अब्बास। अगर आप दूसरे दिलचस्प विषयों पर भी पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट iranradio.ir/hi पर विजिट कर सकते हैं। पूरब और पश्चिम, या दूसरे शब्दों में इस्लामी और ईसाई सभ्यताओं के बीच टकराव क्रूसेड के दौरान उत्पन्न हुआ था। मुसलमानों और ईसाइयों के बीच नफरत क्रूसेड के परिणामों में से एक है। हम क्रूसेड को पूर्वी और पश्चिमी सभ्यताओं के बीच पारंपरिक लड़ाइयों का अगला हिस्सा मान सकते हैं। ये लड़ाइयाँ सदियों से अकेमेनिड्स और यूनानियों के बीच और फिर पार्थियन, सासानियों और रोमन्स के बीच चली आ रही थीं। इस नज़रिए से क्रॉस और धर्म पूरब और पश्चिम के बीच नए सिरे से टकराव का सिर्फ एक बहाना थे। लंबे समय तक चले क्रूसेड से इस्लाम और ईसाई धर्मों के मानने वालों के बीच नफरत और दुश्मनी को बढ़ावा मिला। क्रूसेड से पहले इस्लामी इलाकों में मुसलमानों और ईसाइयों के बीच अच्छे रिश्ते थे, लेकिन क्रूसेड्स के क्रूर कामों ने दोनों धर्मों के मानने वालों के बीच नफरत और दुश्मनी के बीज बो दिए। इन लड़ाइयों के नतीजे में लेवेंट और मिस्र के मुसलमानों ने सैन्य तैयारी में इजाफा कर दिया। जैसा कि हमने पहले कहा था, जब तक मंगोल लेवेंट तक नहीं पहुँचे तब तक इल्खान बिना हारे आगे बढ़ता रहा, लेकिन जब वो फिलिस्तीन पहुंचा तो ऐन जलूत इलाके में उसे अपनी पहली बड़ी हार का सामना करना पड़ा, जिससे मंगोलों का अजय होने का मिथक टूट गया। तब से मंगोलों को लेवेंट और एशिया माइनर में कई दूसरी लड़ाइयों में भारी हार का सामना करना पड़ा और भूमध्य सागर और मिस्र के लिए उनका रास्ता बंद हो गया। क्रूसेडरों के लगातार हमलों के कारण इस्लामी जगत की एकता बेमिसाल थी। यरूशलम को बचाने के बहाने क्रूसेडरों के लेवेंट का रुख करने के बाद इस्लामी दुनिया का पश्चिमी हिस्सा, जो उस समय बिखरा हुआ और अस्त व्यस्त था, दूसरे मुसलमानों के साथ अपनी एकता बनाने की कोशिश करने लगा। कई तरीकों से ये कोशिश की गई। एक तरफ कुछ छोटे मुस्लिम राज्यों ने एकजुट होकर एक बड़ी ताकत बनाने की कोशिश की, दूसरी तरफ पश्चिम एशिया के कुछ इस्लामिक देशों के बड़े शासकों ने छोटे इस्लामिक राज्यों को अपने अधीन करके इतनी ताकत बढ़ा ली कि वो क्रूसेडर्स के हमलों का सामना कर सकते थे। नूरुद्दीन जंगी और सलाहुद्दीन अयूबी इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। इस्लामिक क्षेत्र के मध्य और पूर्वी इलाकों की भौतिक और आध्यात्मिक ताकतों को भी इस गठबंधन में बुलाने की कई कोशिशें की गईं, लेकिन वे बहुत सफल नहीं हुईं। इतिहासकारों के अनुसार अलग अलग यूरोपीय देशों से आए क्रूसेडर्स की एकजुटता ने इस गठबंधन के लिए एक मॉडल पेश किया। हालांकि अक्सर ये देखा गया कि दोनों पक्षों के बीच लंबे समय तक शांति रहने के बाद अंदरूनी झगड़े शुरू हो जाते थे और क्रूसेडर्स इसका फायदा उठाते थे। क्रूसेडर्स के व्यवहार पर मुसलमानों का असर आखिरी क्रूसेड्स में देखा जा सकता है। जिस तरह कैदियों के साथ मुस्लिम सेनाओं और उनके कमांडरों का इंसानियत भरा व्यवहार क्रूसेडर्स के लिए एक पाठ था, उसी तरह क्रूसेडर्स के बदले की भावना वाले और क्रूर व्यवहार ने भी मुसलमानों पर असर डाला। इसलिए पश्चिमी इतिहासकारों के अनुसार जब ममलूकों ने क्रूसेडरों को हराया और उनके एशियाई शहरों पर कब्जा किया तो उन्होंने कई ईसाइयों और क्रूसेडरों को मार डाला। अगर ये बात सच है तो इसे मुसलमानों के साथ क्रूसेडरों के ज़्यादा सख्त बर्ताव का नतीजा माना जाना चाहिए। हालांकि जैसा कि हमने कहा था, इनमें से कई पश्चिमी इतिहासकारों की माने तो जंगी और अयूबियों के समय में मुसलमानों ने पकड़े गए क्रूसेडरों के साथ इतना इंसानी और नैतिक बर्ताव किया कि उन्हें हैरानी हुई। मुसलमानों के बीच गरीबी फैलना इन लड़ाइयों का एक परिणाम था। लगातार लड़ाइयों के कारण खाने की सप्लाई कम हो गई और जमाखोरों ने भी अकाल की गंभीरता को बढ़ा दिया। क्रूसेड के कारण मुस्लिम शासकों द्वारा लोगों पर लगाए गए अलग अलग टैक्स ने समाज में गरीबी का लेवल बढ़ा दिया और लोगों को मुश्किल हालात में डाल दिया। मुसलमानों का यूरोपियन शहरों और देशों के साथ साथ वहाँ के लोगों के रीति रिवाजों और कल्चर से आशना होना क्रूसेड का एक और नतीजा था। युद्ध से पहले ये जानकारी नहीं थी और सिर्फ कुछ जानकारों और व्यापारियों को ही पश्चिम के बारे में थोड़ी जानकारी थी, लेकिन क्रूसेड ने मुख्य रूप से लोगों में यूरोप के बारे में जानने की इच्छा जगाई। साथ ही कई मुस्लिम शहरों पर क्रूसेड ने कब्जा कर लिया और कई ईसाई शहरों पर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया। इस तरह यूरोप के लोगों के पॉलिटिकल सिस्टम, धर्मों, जातियों और देशों, सोच, रुचियों और कल्चर के बारे में लोगों की जानकारी बढ़ी। इस जान पहचान से कुछ लिटरेरी और कल्चरल असर भी पड़े। दुनिया भर में कौमों का एक दूसरे से टकराव का एक लंबा इतिहास रहा है। जब से इंसानों ने खुद को सोशल ग्रुप्स में बांटा है, उन्हें कबीलाई और सामूहिक लड़ाइयों का अनुभव हुआ है। शुरुआत में इंसान ज़्यादातर छोटे छोटे फायदों के लिए लड़ते थे, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़े वे आसानी से और बिना किसी ठोस और भड़काऊ वजह के लड़ाइयों में शामिल नहीं होते थे। इसलिए पुरखों की विरासत पाने और धार्मिक आदेशों का पालन करने जैसे बहाने हमलावरों के लिए दिलचस्प थे। क्रूसेड ऐसे ही विस्तारवादी टकरावों में से एक था जिसे यूरोपियों ने शुरू किया था। किसी भी आसमानी धर्म ने अपने मानने वालों को हमला और बर्बरता की सलाह नहीं दी है, क्योंकि दैवीय धर्म इंसानों को बचाने के लिए आए हैं, उन्हें मारने और ख़त्म करने के लिए नहीं। इसलिए तर्क और लॉजिक पोप और चर्च के इस दावे को कभी नहीं मानेंगे कि ईसाइयों का फ़र्ज़ यरूशलम को मुसलमानों के हाथों से आज़ाद कराना है, खासकर अगर ये आज़ादी यरूशलम और आसपास के शहरों के रहने वालों, यहूदियों और मुसलमानों दोनों को मारने और उन पर जुल्म करने की कीमत पर मिले। ये साफ है कि ये धर्म का गलत इस्तेमाल करने के अलावा और कुछ नहीं है। क्रूसेड में धर्म के इस गलत इस्तेमाल में पोप और यूरोपियन चर्चों के ऊंचे पद वाले पादरियों के साथ साथ जुल्म करने वाले सामंतों का हाथ साफ दिखता है। यूरोपियन लोगों ने 200 साल तक जो क्रूसेड शुरू किए और जारी रखे, जो धार्मिक बहाने से किए गए, वे लेवेंट और नॉर्थ अफ्रीका के मासूम लोगों के खिलाफ लूट और हमले के अलावा और कुछ नहीं थे। कई यूरोपियन ऐसे थे जिन्होंने धार्मिक फर्ज और जिहाद के धोखे में इन लड़ाइयों में हिस्सा लिया। उन्हें पता नहीं था कि उन्हें पोप और पश्चिम के टूटते मतवाद ने धोखा दिया है। क्रूसेड में हिस्सा लेने वाले कई लोग अपराधी, मौकापरस्त, बेरोजगार और पुराने जमाने के सामंतवाद के गुलाम थे, जिन्हें पोप की छूट, जन्नत के वादे और आज़ादी के वादों से बहलाया और फुसलाया गया था। बाइजेंटाइन चर्च और वेटिकन चर्च के बीच अंदरूनी झगड़े और यूरोप के राजाओं और कुछ मामलों में पोप और कुछ राजाओं के बीच दुश्मनी और टकराव ने मुसलमानों के खिलाफ लड़ाइयों के लिए ज़मीन तैयार की। 200 साल के युद्ध के दौरान ईसाइयों ने इस्लामी ज़मीनों पर 8 बड़े हमले किए, जिसमें बड़ी संख्या में मुसलमान मारे गए, घायल हुए या पकड़े गए। उनकी प्रॉपर्टी लूटी गई और उनकी ज़मीनों पर कब्जा कर लिया गया। जैसा कि हमने पहले कहा है, इन युद्धों में सबसे ज़्यादा नुकसान मुसलमानों को हुआ, क्योंकि क्रूसेडर अपने घरों से दूर लड़े, जबकि मुसलमानों ने अपने इलाके में अपनी रक्षा की। इसलिए उन्हें जान और माल के मामले में ज़्यादा नुकसान हुआ। क्रूसेड के दौरान यूरोपियन लोगों ने मुसलमानों के ज्ञान, कल्चर और सभ्यता से सीखा, जिसने पश्चिमी सभ्यता में भविष्य के बदलावों का रास्ता तैयार किया। जिस तरह से मुसलमानों ने इस्लामी विद्वानों के साथ बर्ताव किया, उसने ईसाइयों के बीच पोप और चर्च के स्थान को खतरे में डाल दिया। उस समय की एडवांस जानकारी जैसे मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, मैथ, ज्योमेट्री और नेविगेशनल शिप बिल्डिंग और नेविगेशनल टूल जैसे कंपास से यूरोपियन प्रभावित हुए। मुसलमानों की जानकारी और टेक्निकल स्किल्स सीखकर उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी, साइंटिफिक और रिसर्च सेंटर और सोशल सिस्टम डेवलप किए। मुसलमानों की संस्कृति और सभ्यता को देखकर ईसाइयों ने मुसलमानों के बारे में अपनी गलत सोच को ठीक किया और मुस्लिम ज्ञान को अपनी ज़िंदगी में शामिल किया। यूरोप में रेनेसेंस की शुरुआत इसी से प्रभावित है। ये ध्यान देने वाली बात है कि यूरोपियन ने युद्ध के दौरान हत्या, लूटपाट, हमला और क्रूरता के अलावा कोई और निशान नहीं छोड़े। मेडिटेरियन तटों पर ईसाइयों के हमले ने ان علاقوں کی سرکشا کو خطرے میں ڈال دیا اور لوگوں کی نیند حرام کر دی۔ اس مدعے کی وجہ سے ان علاقوں سے سائنٹسٹ اور ویاپاری بھاگ گئے۔ ان علاقوں کے لوگوں نے کروسیڈرز کا ورودھ کیا۔ ان لوگوں میں زنگی، ایوبی اور مملوک جیسے بڑے اور طاقتور وانش ابھرے جو یورپین کروسیڈرز کے خلاف بنا تھکے ورودھ کرنے میں کامیاب رہے۔ شاید انہی انوبھووں کی وجہ سے میڈیٹیرین کے کچھ کنارے، خاص کر مصر، جنگلی منگولوں کی کرورتا سے بچ گئے تھے۔ پورب اور پشچم، یا دوسرے شبدوں میں اسلامک اور عیسائی سبھیتا کے بیچ ٹکراؤ کو کروسیڈ سے آکار ملا۔ زیادہ سمے نہیں لگا جب یورپیوں نے سبھی کھیتروں میں کچھ بنیادی اور اوپری بدلاؤ کرنے کے بعد اسلامک علاقوں کے خلاف اپنے حملے کو ایک کالونیل روپ دے دیا۔ اس طرح انہوں نے ورشوں تک مسلمانوں کی قسمت کا نردھارن اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور ان کی بھوتک اور آدھیاتمک پونجی لوٹ لی۔ ایک مدعا جو ہم ابھی بھی کچھ اسلامک دیشوں میں دیکھ رہے ہیں، ماڈرن کالونیلزم کے خلاف جاگرکتا ہے جو کروسیڈز کی وراثت ہے۔ دوستو، یہ کروسیڈز پوڈ کاسٹ کا آخری ایپیسوڈ تھا۔ ہمارے اس کاریکرم کو سننے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اس پوڈ کاسٹ میں ہم نے کروسیڈز کے بارے میں تفصیل سے بات کی اور اس کے کارنوں اور پریناموں پر روشنی ڈالی۔